Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tav Tattvam Na Janami. Kidrushosi Maheshwara, Yadrushosi Mahadeva, Tadrushaya Namo Nama. Yo Asau, So Aham Yajam. Om Tat Sat Brahmane Namaha. Jagratadi Triunamuktam. जाग्रादिमयं तथा ओंकार एकसु संवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। ओम शांति। ऋषियों का बहुत सुस्पष्ट शब्दों में ये कहना है और गंभीरता से विचार करने पर हम सब का ये अनुभव है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका नाम कुछ भी रखें लेकिन उसका उद्देश्य जीवन में सुख की प्राप्ति है। हमारी क्रियाएं हम उसे कुछ भी नाम दें कि मैं परोपकार में लगा हुआ हूं, मैं निष्काम सेवा कर रहा हूं, मैं अमुक मंदिर में सेवा करता हूं या मैं कोई और काम, कुछ भी जो हम करते हैं, सोते हैं या जागते हैं, उठते हैं या स्वप्न देखते हैं, मिलते हैं या बिछुड़ते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या झगड़ा करते हैं, झगड़ा भी इसीलिए करते हैं कि उससे झगड़ा करने में सुख का अनुभव होता। तो जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं उन सब का पर्यवसान, उन सब का उद्देश्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। ये बात जो बिल्कुल प्राकृतिक बुद्धि का व्यक्ति है, अर्थात जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है और अपना जीवन जी रहा है, आप पशु के स्तर पर कह लो, पशुओं की ये समस्या नहीं है सुख की तलाश, वो सुखी है, हर हालत में सुखी, वो बंधे हुए हैं तो सुखी हैं, कीचड़ में पड़े हैं तो सुखी हैं, उनको दुख नाम की कोई बात नहीं, वो दो मिनट में लड़ेंगे भी फिर सारे इकट्ठे के इकट्ठे होंगे, तो ये उनकी कोई समस्या नहीं। उस स्तर पर जीने वाले व्यक्ति की भी कोई समस्या नहीं। कोई श्रद्धावान हो उसके लिए भी कोई समस्या नहीं और कोई पूर्ण रूपेण ज्ञानी हो, तत्वज्ञ हो, उसके लिए भी कोई समस्या नहीं। ये सारी समस्या हम जैसों के लिए है जो ना तो अपने आप को अनपढ़ स्वीकार करते हैं और ना ही हमारे में श्रद्धा है और ना ही हम तत्व को पूरी तरह से पकड़कर जीवन में उतार पाए। तो ये जो बीच के इस तरह के लोग हैं, ये सारे शास्त्र, ये सारी साधनाएं, ये उन्हीं के लिए। ऋषियों का ये कहना है कि जो इस तरह के लोग हैं हमारे जैसे, वो जब तक विशेष शब्दों को पकड़कर उन्हीं का ही चिंतन नहीं करते तब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको अपना आधार मान लो या एक खूंटा कह लो, गाड़ लेते हैं, खूंटा गाड़ने के बाद उस पैर रस्सी बांध लो या कुछ भी ताकि घुमा फिरा के उस खूंटे के इर्द गिर्द ही घूमे, या जैसे पतंग की डोर है वो किसी एक हाथ में है तो आकाश में उड़ते भी रहो तो सुरक्षित है, लौट के आ जाए। लेकिन अगर वो डोर ही किसी के हाथ में नहीं, वो ही छूट गई, तो फिर वो पतंग, कटी पतंग का कोई मकसद नहीं होता। तो ये कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे चिंतन की डोर उन शब्दों से बंधी रहे, तो फिर कल्पना की पतंग उड़ती रहे जहां मर्जी है, लेकिन पहुंचेंगे हम सत्य के पास, दुख के नजदीक हम पहुंचेंगे नहीं, अगर इस बात को ध्यान में रखें तो। क्योंकि जितने भी शब्द बने हैं, आज तक दुनिया में कोई दो शब्द ऐसे नहीं बने कि जिनका एक ही अर्थ हो। जितने शब्द हैं उतने ही उनके अर्थ हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं सुख भी कहूं और प्रसन्नता भी कहूं और फिर ये कह दूं दोनों एक ही बात है, ऐसा नहीं। अगर एक ही बात होती तो एक ही शब्द काफी था। भाषाविदों ने, ऋषियों ने, अनुभवकर्ताओं ने ये दो शब्द नहीं बनाने थे, एक से ही काम चल जाता। तो एक ही शब्द के पर्यायवाची भी अगर हों कोई, तब भी उनका अर्थ एक जैसा नहीं। आम तौर पर लोग कहते रहते हैं कि ईश्वर कहो या भगवान कहो या अल्लाह कहो या गॉड कहो, सब एक ही बात है। लेकिन ये बात किसी को कभी भी किसी भी ठिकाने पर नहीं पहुंचाती, क्योंकि ये कोई निसिद्धांत नहीं है। ये व्यवहार चलाने के लिए एक उक्ति है कि व्यवहार चलाना है, चलो क्या लेना है इस झंझट से, आप अल्लाह कहो वो कहे, आगे बढ़ो। तो लेकिन ये सिद्धांत नहीं है कि आप इसको सिद्धांत मानकर ये कहें। कल भी आपके सामने एक बात कही थी और वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति की नहीं, तुलसी की बात कही थी जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा कि वो भी वृंदावन में पहुंच गए, कृष्ण को सिर नहीं झुकाते, वो कहते हैं तुलसी मस्तक तब निवे जो धनुष बाण लोहा। तो वो निष्ठा है किसी एक जगह पर। निष्ठा का मतलब है निश्चय पूर्वक स्थिति। आप दृढ़ निश्चय से मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से किसी जगह पर बैठ गए तो वही निष्ठा है, फिर वो हिलेगी नहीं। निष्ठा, निष्ठा का मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मान्यता से हमने बना रखी, उनमें निष्ठा नहीं है हमारी, लेकिन मान्यताएं हैं हमारी कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, या ये चीज मेरी है, अमुक व्यक्ति मेरा मित्र है, अमुक व्यक्ति मेरा बेटा है, और मेरे बेटे को मेरी बात माननी ही चाहिए। ये निष्ठा नहीं है, ये तो मान्यताएं। मान्यताओं का अर्थ ये होता है कि देखो बेटा जरा सा कुछ इधर उधर कोई काम करे तो सहन नहीं होता, आदमी कहता है मेरे से पूछे बिना ये ऐसे कर रहा है, मेरे से पूछे बिना कैसे चला गया, मेरे से पूछे बिना क्या हुआ। वो ठीक है, लेकिन बेटा मरता भी है संसार में सबके, उस समय कभी कोई नहीं कहता कि ये मेरी आज्ञा के बिना कहां चल पड़ा, मेरे से पूछे बिना कहां गया। सारी उम्र जिसके लिए आप झगड़ते रहे, जब वो सचमुच में जाने लगा तो आपने भी हाथ जोड़ दिए कि ये नहीं। तो बात ये है कि जिंदा रहते हुए ही आपको इतनी कल्पना क्यों कि ये मेरे कहने पर क्यों नहीं चल रहा, मेरे से पूछ के क्यों नहीं गया, मेरे से ये करके क्यों नहीं गया। कारण ये है कि हम अस्तित्व और जीवन में अंतर नहीं कर पाते, एग्जिस्टेंस एंड लाइफ, चेतन और चेतना, यही दो शब्द हैं जिनको लेकर इस उपनिषद में अधिक चिंतन किया गया। चेतन और चेतना, चेतन व्यापक है अर्थात सर्वत्र है, चेतना वैयक्तिक है, जितनी मेरे अंदर है वो चेतना। चेतना को थोड़ी देर के लिए खत्म किया जा सकता है समाधि में, नींद में चेतना खत्म हुई लेकिन चेतन बना रहा, उसी वजह से मैं फिर उठ के बातें करने लग जाता। तो जो एग्जिस्टेंस है, जिसको हम जीवन कहते हैं, जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व। अस्तित्व किसी के अधीन नहीं होता। अस्तित्व की जब अभिव्यक्ति होती है तो उसको जीवन कहते हैं। मेरे में, आप में जीवन है। अस्तित्व सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ होता है कि उसको आप देख तो सकेंगे नहीं, लेकिन एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, वो हमेशा ही है। देखो, कहीं भी कोई भी दुनिया की ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें, जो अस्तित्व के बिना हो। जो चीज भी आप देखते हो उसका अस्तित्व है। बोलचाल की भाषा में हम उसे अस्तित्व को पर्सनैलिटी भी कह लेते हैं। जड़ हो या चेतन हो, देखने में, कहने में जड़ और चेतन है, वस्तुतः कोई वस्तु जड़ नहीं है। हर एक में चेतनता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत अधिक, और किसी को वो चेतना अभी सुषुप्त अवस्था में ही है। तो वो चेतन जो सुषुप्त अवस्था में है उसको अस्तित्व कहते हैं। अस्तित्व का मतलब है चेतन, और वो चेतन जिसके बिना पूरे ब्रह्मांड में कोई एक बाल भर भी जगह ऐसी नहीं है जहां वो ना, लेकिन वो चेतन सोया हुआ, शांत, उसी में जब हलचल होती है तो उससे आगे जीवन बनता है। जीवन आप ऐसा भी सोच सकते हो इसी मांडूक की उपनिषद की प्रक्रिया में, कि अपना पैदा होने से पहले, कि जब हम पैदा हुए उससे पहले कहां थे, फिर उससे पहले कहां थे, माता के गर्भ में थे, उससे पहले पिता के वीर में थे, उससे पहले कहां थे, कहीं ना कहीं थे तो आए। तो फिर करते करते आप अस्तित्व तक पहुंच जाओगे कि सबसे पहले हम अस्तित्व के रूप में थे। वो उस अस्तित्व से बस इनको आप ऐसा ही समझ लो कि जैसा हम बोलते हैं, और वही बोलना अगर उपकरणों के माध्यम से टीवी पे जाके बोलें तो यही आवाज दुनिया के हर कोने में पहुंच जाएगी। वो पकड़ लेंगे, जहां जहां टीवी होंगे वो पकड़ लेंगे। तो ऐसे ही अस्तित्व को पकड़ने के उपकरण हैं। फूलों के माध्यम से भी वो अस्तित्व अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, चींटियों के माध्यम से भी, पौधों के माध्यम से भी वो अस्तित्व अपने आप को अभिव्यक्त करता है। जहां कुछ ना हो वो अपनी व्यक्ति के साधन स्वयं क्रिएट कर लेता है। वो स्वयं, क्योंकि वो चेतन है, जड़ नहीं है। अस्तित्व चेतन है लेकिन स्लम्बरिंग स्टेट, सोया हुआ सा, उसी की हलचल ये दुनिया बनती है। इसी उसको प्रलय कह लेते हैं। हमारे पौराणों की भाषा में प्रलय का अर्थ होता है सोया हुआ चेतन। उसमें हलचल सी हो गई तो सृष्टि हुई और ये स्थिति हुई, और उसमें फिर वो शांत अवस्था में चला गया तो प्रलय हो गई। आना जाना कुछ नहीं है, हमेशा वो बना ही रहता है। उसी पर एक, ये अगर हम भक्तों की भाषा में कहें तो इसको लीला कहते हैं। लीला का मतलब है स्टेज बनाई, उस पर एक्टर आए, अपना अपना पार्ट किया, फिर पर्दे के पीछे चले गए, फिर स्टेज उठा दी गई। तो अस्तित्व भी कुछ ऐसा ही है, वो चेतन भी कुछ ऐसा ही है। प्रलय नाम की कोई चीज नहीं, उसी का एक छोटा सा मिनिएचर रूप। आप प्रतिदिन देखते हो, जागना, स्वप्न देखना और सोना, ये सोए हुई स्थिति को स्लम्बरिंग स्टेट वही वाली समझ लो। जाग पड़ते हैं आप तो ये सृष्टि बन गई, और जिस समय आप स्वप्न देख रहे हैं उस समय स्थिति। तो इस तरह से सृष्टि, स्थिति, विलय, ये रोज हम देख रहे हैं और हो रहा। अब यहां पर उपनिषद ये कहती हैं कि ये बातें तो ठीक है, लेकिन ये सब बातें करने का लाभ क्या है, क्या फायदा हुआ रोज इसी बात को लेकर बैठ गए कि जाग रहे हैं, सो रहे हैं, सपन आ रहा है, फिर रोज इसी बात को लेकर कि घड़े से मट्टी बनी, मट्टी से घड़ा बना, दोनों एक ही हैं, ये सांप में रस्सी या रस्सी में सांप है, हर रोज एक ही बात को दोहराते हुए इतने वर्ष हो गए, इसका कोई मकसद भी तो है या नहीं। फिर उसी पहली बात पर जो आज शुरू में की हम जाते हैं, ऋषियों का कहना है मकसद हर बात का यही है कि हम दुख से छूटें और सुख की प्राप्ति। बातों में उलझकर हम और कामों में लग जाते हैं, ये उद्देश्य भूल जाते हैं। अगर वो उद्देश्य भी बना रहे, वो उद्देश्य ही असल में वो आप समझ लो कि खूंटा है, वो उद्देश्य ही वो हाथ है जिसमें डोर पकड़ानी है अपनी, फिर पतंग की तरह जहां मर्जी उगते रहो। तो जब तक हर समय हमें अपना उद्देश्य का बोध नहीं कि हम चाहते क्या है, उससे नजर हटते ही हम बहक जाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि अमुक चीज, चाहते हम सुख को हैं, ये एक शब्द है सुख, लेकिन उसके लिए हम जितने भी काम करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, असल में सुख की प्राप्ति के लिए जो काम किए जाते हैं उनका नाम दुख है। दुख अलग से कोई चीज नहीं, वहां जाना है, ये करना है, दुकान पे जाना है, बिजनेस करना है, उस मुकदमे में जाना है, कोर्ट में जाना है, लड़ाई है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, वो जो भी काम हम कर रहे हैं कार्य सुख के लिए रहे हैं, लेकिन सुख के लिए किए जाने वाला कोई भी काम दुख का कारण, नहीं तो दुख कोई नहीं। तो फिर क्या करें, काम ना करें? शास्त्र कहता है ऐसी बात नहीं, आप थोड़ा सुख के स्वरूप को पहचानो कि सुख किसे कहते। हमारा ये ख्याल है कि सुख पैसे से मिलेगा। महात्मा बुद्ध हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है कि पैसे की कमी नहीं थी, राजा के बेटे थे, पूरा राज्य था, सुख उसको राज्य को छोड़ के मिला। अगर पैसे में सुख मिलता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो उसकी कोई कमी नहीं थी उसके पास। अशोक सम्राट जो बाद में बुद्ध मत के बहुत बड़े प्रचारक बने, वो तो बहुत बड़े योद्धा भी थे अपने समय के, और उनको कोई कमी नहीं थी किसी तरह से, लेकिन सुख नहीं मिला। अर्थात सुख अगर पैसे में हो, सुख अगर किसी तरह से संतान में हो, सुख अगर किसी भी चीज में जिनमें आप सुख समझ रहे हैं, किसी में भी हो, सुख का संबंध अगर किसी स्थान से हो कि वहां जाके सुख मिलेगा या वहां जाके दुख मिलेगा, वहां जाके ये होगा, तो हमेशा आप इस वहम में रहोगे कि वहां सुख है। सुख की भ्रांति तो हो सकती है, सुख नहीं हो सकता। सुख तो जब तक विवेक नहीं करोगे, पहली बात तो ये है कि हर समय मन में ये रहे कि मेरा जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूं इसका उद्देश्य सुख की प्राप्ति और दुख से बचना है। अब शास्त्र में जो शब्द बने, उपनिषद का संबंध बुद्धि से, ये बुद्धि का आदर करता है। बुद्धि के आदर का मतलब है शब्दों का आदर करता है। शब्दों की पकड़ हो, अर्थात कोई भी शब्द बोल दिया, शब्द ही बोले हुए, बिना सोचे हुए बोले हुए शब्द जितना दुख का कारण बनते हैं इतना कोई नहीं बनता। बड़े बड़े जो युद्ध हुए हैं इतिहास में, वो शब्दों के कारण ही हुए, कोई उसमें बात नहीं थी, लेना देना कुछ नहीं था, बस एक कोई शब्द कहा गया, बस उसी शब्द ने ही कहीं कुछ कर दिया। प्राचीन काल का महाभारत का युद्ध भी तो शब्द ही था एक, और कोई बात नहीं थी कि भाई अंधे की औलाद ठीक तरह से नहीं देख सकती, ऐसा चाहे मजाक में कहा या कुछ कहा। लेकिन राजस्थान का इतिहास तो भरा पड़ा है। राजस्थान की जब छोटी छोटी रियासतें थी, कभी कभी आप राजस्थान का इतिहास पढ़ के देखें। एक बहुत अच्छी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल टॉड की एक पुस्तक, और लोगों ने भी लिखी। तो राजस्थान के राजा लोग एक ही जाति के, एक ही धर्म के, आपस में रोज लड़ते रहते, बातों बातों में, और कोई कारण नहीं होता था, केवल बात ही इससे कि उसकी मूंछ थोड़ी छोटी क्यों थी, बस उस मूछ को लेकर ही झगड़ा और उसमें कितने लोग मर गए, कितना कुछ हुआ। तो शब्दों का प्रयोग, अब भी आप ये देखो, अगर कोई सफल व्यापारी भी है तो शब्दों की वजह से, इसलिए नहीं कि उसके पास सामान बहुत, कई ऐसे ऐसे स्टोर हैं भरे पड़े हैं लेकिन ग्राहक कोई नहीं, और कई ऐसे हैं अंदर कुछ नहीं सामान के लेकिन ग्राहकों की लाइन लगी हुई, क्योंकि उसके बोलने का ढंग है, वो जो हैंडल कर रहा है ग्राहकों को, उसके बोलने का ढंग ऐसा है कि कहीं ग्राहक जा ही नहीं सकता। भले ही उसके पास चीज ना हो, वो हफ्ते भर बाद कहेगा तो उसी के पास आएगा लेने, वो तब तक ला देगा कहीं ना कहीं से। तो बात शब्दों की ही है वहां पर, चीजों की नहीं। तो शब्दों पर जिसकी पकड़ है, बिना शब्दों के सुख नहीं, अब आप ऐसा मान। थोड़ी देर के लिए अगर उपनिषद की बात को हम लेते हैं तो उपनिषद कहते हैं कि सुख जिसकी आप तलाश में हो वो शब्दों से ही है। लेकिन एक बात आप अब ध्यान में रखें कि सुख, प्रसन्नता, आनंद और रस, ये मिलते जुलते शब्द हैं। हम कहते हैं जीवन में रस चाहिए, कोई जीवन में प्रसन्नता ही बहुत है। आनंद तो सच्चित आनंद में एक शब्द है ही हमारा, और सुख वो शब्द है जिसको हम रोज बोल ही रहे हैं। अब ये चारों एक नहीं, वास्तविकता ये है कि हमें असली तलाश तो रस की है। उपनिषद में भगवान का जो स्वरूप कहा गया वो कहा गया रसो वैस, वो रस रूप है, रस रूप नहीं, वो रस ही है। रसो वैस, रसो वैस का मतलब है वो रस ही है। यहां रस रूप भी नहीं, अगर हम कहेंगे रस रूप तो फिर भी दो चीजें हो जाती हैं कि वो कोई और चीज है, रस कोई और चीज। तो रसो वैसा, ये तैत्तरीय उपनिषद की एक श्रुति कि वो रस ही है, और फिर उसमें ही ये बात कही गई कि ये सारा संसार उसी से पैदा हुआ, उसी में स्थित है, उसी में विलय हो जाता है। उसका अर्थ भी यही हुआ कि संसार की उत्पत्ति, संसार की स्थिति, संसार का विलय रस में। लेकिन हम इस बात को न जानते हुए सुख को और रस को प्रायवाची मानते हुए कि एक ही बात है, दुखी होते हैं। देखो, सुख का संबंध इंद्रियों से है, सुख का संबंध शरीर से है, सुख का संबंध स्थूल शरीर से है, अर्थात इन आंखों से कुछ देखकर, इन कानों से कुछ सुनकर, इन हाथों से कुछ छूकर, इस जुबान से कुछ चखकर, इन पांवों से चलकर कहीं जाकर जो हमें मिलता है उसको सुख कहते। उसका संबंध शरीर से है और शरीर के साथ ही वो खत्म भी हो जाता, क्योंकि शरीर अपने आप में स्थायी नहीं है, बदलने वाला। बदलने वाले का अर्थ होता है कि हर तरह से बदलता है, देश काल के साथ भी हर तरह बदलने का मतलब है कि जो हम आज से 20 साल पहले थे अब नहीं, जो आज से 70 साल पहले शक्ल सूरत हुआ वो थी अब नहीं। तो आज से 20 साल पहले जिन चीजों में मुझे सुख मिलता था अब नहीं मिल रहा। अब वही चीजें जो आज से 70 साल पहले वो हमें खिलौनों में, सीटी में और उसमें सुख मिलता था, आज वही अगर बच्चे हमारे पास खड़े होकर बार बार वो सीटी सी बजाएं तो दुखी हो जाते, लेकिन वो किसी समय हमने बहुत बजाई, कितना भी कोई मना करे, उसके लिए मार भी पड़ती थी लेकिन मार खा के फिर सुनाते थे उन्हें वही। तो अब वो नहीं रहा, तो वो सुख का संबंध शरीर से है, शरीर बदलने वाला है, इसलिए वो सुख भी बदलता रहेगा, और बदलता हुआ सुख को ही दुख कहते। समस्या हमारी ये है कि सुख हमेशा रहे, और वो कभी वो सुख हमेशा रह नहीं सकता। चाहे कितनी भी आप कल्पनाएं करो, वो कल्पनाएं हमें दुख की ओर तो ले जाएंगी, लेकिन सुख कभी नहीं दे सकते। बहुत बहुत शेरो शायरी में सुख ढूंढने की कोशिश की गई कि तुम यूं ही मेरे पास बैठे रहो, मैं यूं ही सारी उम्र मुस्कुराता रहूं। तो ये कभी सारी उम्र तो क्या 3 घंटे इकट्ठे नहीं बैठ सकते कोई, और फिर सारी उम्र मुस्कुराता रहूं, और बात सुन लो आप, तो मुस्कुराना बड़ी मुश्किल से वो भी 1 सेकंड के लिए। आज के युग में सारी उम्र मुस्कुराता रहूं, या कोई दीवाना हंसे या जिसको वो तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुरा सकता है कौन। आज के युग में ये बातें ही हैं कि तुम गाते रहो, मैं देखता रहूं, वो करता रहे। तो ये असल में सुख की तलाश में मारी गई टकरें हैं, सुख इनमें से नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए लय का, ताल का, स्वर का, तबले का सुख है कि हमने भी ताली बजा ली साथ में और बात खत्म हो गई। तो शरीर से संबंधित जो कुछ भी है वो सुख है, और वो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलेगा, और उसका कोई तरीका नहीं। आंख रूप को देखे, कान शब्द को सुने, हाथ किसी को छुए, तब वो सुख मिलेगा। इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाला सुख वो शरीर से संबंधित है, और शास्त्र ये कहता है कि वो असल में सुख नहीं, दुख ही सुख के कपड़े पहन के आया हुआ है, थोड़ी देर में वो दुख में बदल जाएगा। गीता में तो भगवान बहुत स्पष्ट शब्दों में मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख का ऐसा आगमापायनो नित्यम तान ततिक्षर स्वभार। भगवान ऐसी बढ़िया वहां सलाह देते हैं कि ये इससे छुटकारा नहीं होगा आपका सुख दुख का, इसलिए विवेक कर लो। तो जिसे हम सुख कहते हैं, इसीलिए शास्त्र में जब बात करोगे आप, इसलिए जब उपनिषद में बात करोगे, तो उसमें सुख शब्द नहीं है, आत्यांतिक सुख। हर बात यह है कि दुख की नैतांतिक निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति। जब भी आप उपनिषद का कहीं देखोगे और उपनिषद का अनुवाद अगर किसी सचमुच के उपनिषद के जानने वाले ने किया होगा, तो वो ये शब्द लिखेगा कि सुख की आत्यांतिक प्राप्ति और दुख की नितांत निवृत्ति। अर्थात दुख की नितांत का मतलब है कि फिर दोबारा नहीं आएगा, कि दुख निवृत्त तो हो जाते हैं। पहली तो बात यह है कि निश्चय आत्मिक नहीं है कुछ भी इस संसार में। हमें कोई भी बीमारी भी हो जाए छोटी मोटी, तो कोई डॉक्टर निश्चय आत्मिक रूप से ये नहीं कह सकता कि ये दवाई ले लो आप ठीक हो जाओ। उस कोई भी जिसको आप ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरी प्रमाणिकता के साथ, कोई नहीं कहेगा कि मैं गारंटी देता हूं कि इससे आप ठीक हो जाओ। वो कहेगा जी खा के देखो, एक हफ्ता नहीं होता तो फिर मुझे फोन कर लेना, आप हफ्ते बाद फोन करो, वो दवाई बदल देगा, कहेगा ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो वो कर लो। तो इसलिए कोई भी यहां पर गारंटी नहीं है कि आप जरूर ठीक हो जाओगे। फिर अगर ठीक हो भी गए तो ये गारंटी नहीं है कि दोबारा वो बीमारी ना हो।